اگلی سورت عبس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس و تولى عن جاه العمى وما يدريك لعله يزكى. ترش روح ہوا اور بے روحی پڑتی اس بات پر کہ وہ اندھا ان کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے, اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں, حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری. اور جو آپ کے پاس دوڑا ہوا آیا اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تو آپ بے روحی برتتے ہیں. ہرگز نہیں. انہا تذکرہ, یہ تو ایک نصیحت ہے. ہائی لائٹ کیجیے گا ان آیات کو. کل انہا تذکرہ, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, پھر جس کا دل چاہے اس کو قبول کر لے. آپ کا میرا کیا دل چاہ رہا ہے, قبول کریں کہ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا. ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے ایک موقع پہ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت آ گئے جب آپ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دین کی دعوت دینے کے خیال میں تھے, اور آپ نے اس لیے یہ سب کچھ رکھا کہ لوگوں کو اسلام کی محبت اور دین کی دعوت دی جائے. لیکن وہ چونکہ یہ منظر دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے تھوڑا سا جب اصرار کیا اپنا جواب ڈھونڈنے پہ, تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ یہ تو اتنا شخص ہے, یہ تو ایسے نا جیسے اس وقت کسی گیسٹ سے بات کی جائے ان پہ تو کوئی اب مینجمنٹ کا شخص آ کے بیچ میں بول دے, یا کوئی پرانا اسٹوڈنٹ جس سے بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے. کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے فوراً نکلنا ہوتا ہے, کچھ کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات تک رکیں گے. تو اگر کسی دوسرے کو توجہ دی جائے تو وہ ایک اس وقت تقاضا ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہ صحابی تھے. لیکن اللہ کو ان کی تڑپ اور ان کی طلب, اور یہاں اگر آپ نے نوٹ کیا تو ان کی دو خوبیاں ہائی لائٹ کرنے والی ہیں کہ وہ کس دل کے ساتھ آئے تھے. نمبر ایک, دوڑتے ہوئے آئے, سست نہیں تھے, لیزی نہیں تھے کہ اچھا کب جاؤں کیا کروں, اور دوسری چیز ڈر رہے ہوتے تھے. دو چیزیں آپ کو اللہ کی کتاب سیکھنے میں مدد دیں گی. ابھی سے لکھ لیں, آپ کا دوڑ دوڑ کر آنا یعنی آپ کا شوق, اور آپ کا ڈر کہ کہیں میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں. جس دن آپ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑیں گے نا آپ کلاس نہیں لے سکیں گے. خوف, محبت, ڈر, سب کچھ, جلدی جانا ہے, سب سے آگے بیٹھنا ہے, لیٹ نہ ہو جاؤں, ٹریفک میں نہ پھنس جاؤں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اور شوق شوق کیسے آئے تھے. تو اللہ نے یہاں ایک نصیحت دے دی کہ جو انسان دین سیکھنے کا شوق اور طلب رکھے اس کو توجہ دے. بعض دفعہ انسان کوشش کرتا ہے دوسروں کو دے, لیکن کچھ لوگ تو پھر اور ہی نخرے کرنے لگتے ہیں. تو یہاں بتا دیا کہ یاد رکھو, یہ کسی فقیر کی صدا نہیں ہے, یہ کوئی بھیک مانگنے کی صدا نہیں آپ کو دی جا رہی, یہ اللہ کا کلام ہے جس کے پڑھنے کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ جو آتے ہیں سننے لے ان کی اتنے بھی نخرے نہیں اٹھانے چاہیے کہ ان کو اپنے اوپر ہی فخر ہونے لگے کہ ہم کوئی بہت ہی بڑی چیز آگے جنہوں نے قرآن سیکھا. عزت دیجئے, پیار کیجئے. آپ کی باڈی ایکشن تھا نا, صرف جیسے تیوری چڑھاتے ہیں اتنا سیکشن بھی اللہ نے برداشت نہیں کیا کہ آ لگتا ہے آپ تو رسول ہی نہیں, رسولوں سے تو یہ بات ہی نہیں ملتی. تو لوگ جو جتنے اعلیٰ درجے پہ جائیں نا, آپ سب کے لیے بھی یہ نصیحت ہے, جتنی آپ کا عہدہ بڑھا ہوتا جائے, رینک بڑھا ہوتا جائے, آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں, اتنے کیئرفل ہوں. لوگوں سے کبھی مذاق بھی نہ کریں, ہنسی بھی نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ میں نے تم سے مذاق کیا تھا. اور آپ سب کو خاص طور پہ اسٹاف کو تو میں یہ بات طوطے کی طرح پڑھا دوں, کبھی کسی سے مذاق میں بھی یہ نہ کہ تم نہیں آؤ گی. آ گئی تم, کوئی اندر آئے, اچھا جی آ گئی, دیر ہو گئی. نیور ڈو دس. لوگ اتنی جلدی فیل کرتے ہیں اس بات کو, اچھا جی آپ کے اسٹاف کے لوگوں نے ہمارا مذاق کیا, ہم آئے تو یہ ہوا. حالانکہ آگے پیچھے جو کچھ کرتے رہے کراتے رہے, تو اس کی عزت قائم رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات کی گئی کہ انہا تذکرہ, یہ ہے اصل میں اس قرآن کا اصل نام قرآن کے بعد, کہ یہ نصیحت ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہا تو آپ نے کر لیا, اور دل چاہا تو نہ کیا, اور دل چاہ جو کرتے رہے بعد میں اللہ معاف کرتے. ایسے میں ہم بزی بہت ہیں, ہم یہ وہ دس دیٹ کچھ اینڈ کچھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہہ کے مجھے اور آپ کو یہاں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی فکر کریں, کیا میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس قرآن کو قبول کروں, اور اگر جی چاہ رہا ہے تو پھر اس کے لیے تو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا یہ ایسے صحیفوں میں درج جو مقرم ہیں, بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں, معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. یعنی یہ قرآن جو آپ کے میرے پاس آئے نا, یہ ان لیڈز کی طرف سے ہے. یہ ملائے لالہ کون ہے؟ وہ فرشتے جن کے ہاتھوں سے یہ کلام, یہ وحی اتر کر دنیا میں آئی. تو آپ اور میں کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ دنیا کی سب سے پوش کتاب ہے. ایک پریزنٹیشن آپ کو بھیجا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کچھ کہتے ہیں دو دن پہلے, ریڈی رکھے بعد میں دکھائیں گے, لیکن بی پی پی अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसी खूबसूरत किताब आज तुम्हारे हाथों में, कहाँ थे हमारे हाथ इस काबिल कि हम इस किताब को उठाते। अपने हाथों को प्यार करें, इस किताब को छूकर इस किताब से मोहब्बत करें। ये इतनी खूबसूरत किताब आज मेरे आपके हाथ में है, लेकिन इंसान का क्या कहा जाए, इंसान इतना ना शुक्र है। कुतिल अल इंसान मा अकफर मिन अय्यि शयइन खलका, लानत हो इंसान पर, कैसा सख्त मुनकर हक है। किस चीज से अल्लाह ने इसको पैदा किया, नुतफे की एक बूंद से। अल्लाह ने इसे पैदा किया, फिर इसकी तकदीर मुकर्रर की, फिर इसके लिए जिंदगी की राह आसान कर दी, फिर इसको मौत दी और कब्र में पहुंचा दिया, फिर जब चाहे वो इसे दोबारा खड़ा कर दे। ये है मेरी आपकी, वो कहते ना, दो लफ्जों की जिंदगी की कहानी। कल जीते थे, आज मरते हैं, फिर जिएंगे, फिर मरेंगे। अल्लाह ने कब्र देकर गलने सड़ने से बचा लिया। आप सोचिए कि लाशें घरों में पड़ी होती, कीड़े चल रहे होते उसके अंदर, कोई इज्जत रहती तो? मुट्ठी भर खाक थी जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत, इतने अच्छे से कपड़े पहनाकर बिठा दिया, फिर मरा तो उसकी लाश को गलने की बजाय कब्रों में डाल दिया। आप देखिए, कब्रिस्तान से भी गुजरे तो बू नहीं आती, क्योंकि मट्टी के अंदर स्मेल को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी कि तुम्हारी लाशों को ना बिगड़ने दिया। आज लोग खुद अपने हाथों से लोग लाशों को तबाह बर्बाद कर ले, ये और बात है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इस आयत में हम सबको शुक्र करने का मौका दिया कि जब तक इस जमीन पर रहो इज्जत से रहो, और जब दुनिया से जाओ तो उसके बाद अल्लाह से दुआ करो कि हमें अच्छी जगह नसीब हो, हमारी मौत कहीं लोगों के लिए तमाशा और खेल ना बन जाए। कल्ला लम्मा यक्दिमा मरहा फलयंजुर इंसान इला तामे, हर किस नहीं, इसने वो फर्ज अदा ही नहीं किया जिसका अल्लाह ने इसे हुक्म दिया था। हाईलाइट कर लें, कब्र में जाने के बाद यही मसला उठेगा। बस फरिश्तों चेक करके आओ कि जो काम इसके जिम्मे लगाए थे वो इसने किए। ओहो, जिस काम का हुक्म दिया था वो नहीं किया, वैसे और अपनी मर्जी के बहुत सारे काम किए हुए, क्या फायदा होगा। फिर जरा इंसान अपनी खुराक को देखे, हमने खूब पानी गिराया, फिर जमीन को अजीब तरह से पाड़ा, फिर इसके अंदर उगाए गल्ले और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूरें और घने बाग और तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए जिंदगी के सामान के तौर पर। एक ही जमीन है और उसमें से सब्जा निकलता है, और आप देखिए इंसान को अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। भूसी जानवर खाता है, फल इंसान खाता है, यानी छिलका जानवर खाता है तो फल इंसान खाता है। और जानवर छिलका खा के क्या देता है, दूध, भूसी खा के देता है दूध, और इंसान इतने लजीज खाने खाकर क्या करता है, वो क्या दे रहा है इंसानियत को, खुद को क्या दे रहा है, पहाड़ों को क्या दे रहा है, अल्लाह के लिए वो क्या कर रहा है। तो हर इंसान अपने हाल पे गौर व फिक्र करे तो उसको अपना असल नजर आ जाएगा। आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज बुलंद होगी, क्यामत का एक और नाम नोट कर लीजिए, अस्सौखा। इतनी तेज आवाजें आ रही होंगी क्यामत के दिन कि कान फूट जाएंगे, कान फटने लगेंगे। उस रोज आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। इनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा, किसी अपने सिवा किसी का होश ना होगा। ये थी आयते उम्मा, कहानी तो वहां सुना दी, यहाँ ये सुन लीजिए कि जब इंसान जब सबसे मायूस होकर वापस अपने अमाल नामे के पास आएगा और उसको उस वक्त यकीन होगा कि अब तो तबाह हो गया, क्योंकि अब तो जहन्नुम में जाना है, उस वक्त फिर अल्लाह ताला को उस पर रहम आएगा और फरिश्तों से कहेंगे कि जो मैंने इसके लिए जो छुपा के रखा था वो लेकर आओ। दो तीन रिवायात है मुख्तलिफ, एक में आता है कि एक छोटा सा मोती फरिश्ते लेकर आएंगे डिबिया में और उसको कहा जाएगा कि इसको अपने नेकियों के पलड़े में रखो। तो हैरान होगा कि इतने से मोती का वजन क्या होगा इस पलड़े में, शायद जैसे सबने इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया तो यहां भी को मेरे साथ मजाक हो रहा है, लेकिन जो ही वो मोती रखेगा उसकी वजह से उसका नामो माल झुक जाएगा और हुक्म होगा जाओ जन्नत में चले जाओ। और एक रिवायत में आता है कि वहां एक गठड़ी होगी वो रखी जाएगी, क्या होगी अल्लाह नोस्ती बस, हम तो ईमान रखते हैं ऐसा होगा, तो वो रखने की देर है तो पलड़ा झुक जाएगा। वो कहेगा अल्लाह ताला ये क्या आज अपने एहसान किया, तो अल्लाह ताला कहेंगे एहसान नहीं किया, ये आपका ही अमल था, हाँ छुपा के रखा हुआ था। वो फला रात चाद करो सर्दियों की है, जो भी तू भी सो रहा था सब सो रहे थे और मेरे खौफ ने तुझे उठा दिया। ये नहीं कि अपना कोई काम था, कोई पेपर था तो आज अल्लाह से दो नफिल पढ़ के दुआ कर जाऊं, कोई दुनिया के काम रुके वो भी करिए, लेकिन जिस दिन अल्लाह के खौफ से आंख खुल जाए ये वो दिन है। फिर तू उठा, तूने वजू किया, चाहे नमाज पे खड़ा हुआ था, ऐसे रिकॉल होगी मेमोरी जैसे स्क्रीन देखते हैं आप। हाँ अल्लाह हुआ था, याद है। फिर याद है तेरी आंख से एक आंसू का कतरा गिरा था? जी अल्लाह याद है। कहा मैंने उसको मोती का बना के संभाल दिया था, मैंने तेरे उसे एक आंसू की कदर की है कि जो तूने मेरे खौफ से बहाया। अगर दुनिया में तुझे इसे एक आंसू की वजह से देता तो शायद दुनिया की बादशाहत अल्लाह दे देता, लेकिन अल्लाह को पता था कि इंसान पर इतना मुश्किल वक्त आने लगा। उस वक्त फिर इंसान को पता चलेगा कि वकान अल्लाह शाकिरन अलीम, इसका मतलब क्या है। लोगों के सामने आंसू बहाएंगे ना तो डी वैल्यू होंगे, अल्लाह के सामने आंसू बहाएंगे तो आप वैल्यूएबल बन जाएंगे। और बात से कहता है कि वो दुआएं जो दुनिया में वो मांगता रहता था लेकिन कबूल नहीं होती थी, हर इंसान की कई दुआएं ऐसी होंगी जो सारी जिंदगी मांगी कबूल ही नहीं हुई, चले गए दुनिया से, तो वो सारी दुआएं क्या जाया होंगी? नहीं, वो वहां जाकर उसको नेकियां दिलवा देंगी। तो आज सोचिए, उस दिन इतने प्यारे खून के रिश्तों से इंसान भागेगा तो आज उनकी वजह से गलत काम करना और उनको खुश करने के अल्लाह को नाराज करना, ये कैसे होगा? क्यामत की कैंची सारे रिश्तों को काट देगी, इंसान को बिल्कुल किसी की परवाह ही नहीं होगी कि जो भी है, ये है, वो है, दिस एंड दैट। तो अल्लाह ताला कहते हैं आज इन रिश्तों को अल्लाह की तरफ जोड़ लो। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला के साथ अपने आप को जोड़ेंगे आपकी बात में सर आएगा और फिर आपके घर वाले भी आपकी बात सुनेंगे। फिर उसके बाद क्यामत के दिन के चेहरों की बात है। आज दुनिया में इंसान चेहरे का बहुत ख्याल रखता है, तो दो तरह के चेहरे, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा। कुछ चेहरे उस रोज दमक रहे होंगे, हशाश बशाश और खुशरम होंगे, यानी चेहरों से फ्रेशनेस दिखेगी, लगेगा कि ये खुश है। इसके बरक्स कुछ और चेहरे, वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कुछ चेहरे ऐसे जिन पर खाक उड़ रही होगी, कलवन्नस छाई होगी, यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। क्यामत के दिन चेहरे क्यों खाक आलूद होंगे? काम ना करने का रिग्रेट। दुनिया में कभी आपने देखा होगा कि मेहनत ना की और फेल हो गए, तो वो फेल होने का जो गम था वो चेहरे से दिखता। जिन्होंने जिंदगी को जाया कर दिया उनको उस दिन दुख होगा। तो दुनिया के फेशियल्स के साथ साथ क्यामत के दिन के फेशियल का भी ख्याल रखना। हदीस में अल्लाह के नबी की दुआ है कि जिसने मेरी हदीस को सुना, उसको पढ़ा, याद करा, उसी तरह आगे पहुंचा दिया, तो अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखे, नजरुल्लाहुल मा, अल्लाह उसके चेहरे को फ्रेश रखे। तो बहुत सारे चीजें हैं जिससे आप अपने चेहरों को रोशन कर सकते हैं, जिसमें एक इस हदीस का पढ़ना भी है। अरबिक टेक्स्ट छोटे छोटे आप अगले कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे आपको ऐसा ऐसा, ताकि आप खूबसूरत भी तो हो, लोग आपको कहें कि आपको क्या हो गया। और कई स्टूडेंट्स इसका वाकई इजहार करते हैं कि हमारे रिश्तेदार साथी हमें कहते हैं अब आपके चेहरे पर चमक ज्यादा है, अब आप पहले से खूबसूरत हो गए। क्यों? जन्नती जब अल्लाह ताला को देख कर आएंगे ना तो उनके चेहरों पर भी हुसन आ जाएगा। उनके घर वाले कहेंगे जब तुम गए थे तो इतने खूबसूरत नहीं लगते थे, आए हो तो तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो गए हो। तो क्या अल्लाह की ये दीदार से इंसान खूबसूरत हो तो अल्लाह के कलाम से नहीं होगा? तो अपने आप को ग्रजिस से पाक करें, गलत चीजों से पाक करें, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको ऐसा करेगा। और दुनिया में हम कितने लुक्स कॉन्शियस होते हैं लेकिन आखिरत के बारे में हमने बहुत कम सोचा। अल्लाह ताला हमें कुफर और फजूर से महफूज रखे।